तफसीर देखते हैं आयत नंबर 72 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व इस कतल तुम नफ्सं फद्दारा तुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब मार डाला था तुमने एक शख्स को, फिर एक दूसरे पर इसका इल्ज़ाम धरने लगे, और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे। कैसे जाहिर करना था? इसका तरीका अगली आयत में बताया गया। वकुल नद्रिबूह बिबादिहा, फिर हमने कहा मारो इस मुर्दे पर इस गाय का एक टुकड़ा। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, इसी तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, और दिखाता है तुमको अपनी कुदरत के नमूने ताकि तुम गौर करो। यहाँ से रुकू का आगाज़ है, लेकिन जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो पिछले रुकू में गुज़र चुका। हमने पिछले रुकू में देखा कि बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हुआ, और कत्ल का फ़ैसला करवाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए बताया गया कि कोई भी गाय लेकर उसके टुकड़े को मुर्दा के जिस्म के साथ लगाएं, अल्लाह की कुदरत से मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा और अपने कातिल का नाम बता के दोबारा मर जाएगा। इस मसले को चारों नाचार ना चाहने के बावजूद उनको करना पड़ा, और उसके बाद फिर उन्होंने वही कुछ किया जो उनको करना नहीं था। यहाँ अल्लाह ताला उसी वाक़े की इब्तदा बताते हैं। अगर अकल से पूछा जाए तो ये जो आयत व इस कत्ल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फीहा, ये पिछले रुकू की पहली आयत होनी चाहिए थी, राइट? अकल तो यही कहती है ना, हम जब कोई भी कहानी बयान करते हैं तो उसको बिल्कुल काफिये के साथ काफिया मिलाते हैं, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये स्टाइल। अल्लाह ताला का ये अंदाज़ नहीं है। एक तो ये वजह है क्योंकि कुरान पाक हमें किस्से और कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं आया, बल्कि हिदायत की किताब है, ठीक है? तो बहुत जगह आप देखेंगे कि पूरी पूरी कहानी भी बयान की गई है, लेकिन बीच में बहुत कुछ महव है। ख़ास तौर पे सूरत यूसुफ में आप देखेंगे कि जो पूरी सूरत ही एक कहानी के ऊपर है, उसमें भी कई जगह बहुत सारी चीज़ें सुनने वाले को अपनी समझ से समझनी पड़ती हैं। एक वजह ये है इसकी। दूसरी वजह इस आयत की इधर आने की क्या है कि सिर्फ यही वाक्या गाय के वाक्य का सबब नहीं था। जैसा कि हम पिछले रुकू के आगाज़ में देख चुके कि दो और भी वजूहात थी। एक तो उनके दिल से गाय की मोहब्बत को निकालना, ताज़ीम आ चुकी थी उसको निकालना था, और दूसरा उनका अकीदा आखरत जो था उसको मजबूत करना। एक तीसरी वजह भी है जो बहुत ही काबिल तवज्जो है, और वो क्या कि असल सबक जो था ना वो कत्ल में नहीं था, मुर्दे के दोबारा ज़िंदा होने में था। कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं, ना इससे सरोकार है। असल इस कहानी का मोरल या इसका अखलाकी सबक उस मुर्दे के दोबारा ज़िंदा होने में था कि देखो अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, और अल्लाह ताला कत्ल के फ़ैसलों को किस तरीके से सॉल्व करवा सकता है। कि बज़ाहर तुम समझ रहे थे कि ये बहुत ही बुरी बात होगी, लेकिन अल्लाह ने उससे तुम्हारे मुआशरे का एक इस तरह दूर कर दिया। अब आप देखिए कि इस आयत को अगर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखें कि वाइस कत्ल तुम, जब तुमने कत्ल किया, किसके सामने ये आयत उतर रही है? मदीना के यहूद के सामने। उन्होंने नहीं किया था, उनके बड़ों ने किया था, तो बार बार उनको कहा जा रहा है। दर हकीकत ये जो हिस्सा हम इस वक्त सूरत बकरा का पढ़ रहे हैं, ये बनी इसराइल पर फर्द जुर्म आयत हो रही है। जैसे किसी पे मुकदमा दायर किया जाता है ना, तो जज कहता है तुमने ये भी किया, तुमने फलां वक्त वो किया, तुम्हें याद है वो किया, तुमने याद है वो किया। गोया के इन आयात में कई सदियों की तारीख जो है उसको दोहराया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि बनी इसराइल इन बातों पे अफसोस करने की बजाय कि वाकई देखो हमारे बाप दादा कितने नासमझ थे कि उन्होंने एक सीधे साधे हुक्म को कि भाई गाय को ज़िबा कर दो, इतना मुश्किल कर लिया कि वो उसको ढूंढने में इतना टाइम लगा, तो बजाय इसके कि अफसोस करते कि हाँ भाई हमें तो बात समझ आ गई है, लेकिन हमारे बाप दादा बेचारे समझदार नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अख्तियार किया, और वो क्या था, फ़ख्र करते थे, लो हमारे बाप दादा गलत हो सकते हैं, तुम्हें आज जो बातें अच्छी लगती हैं समझ आती हैं, क्या हमारे बाप दादा को समझ नहीं आई थी? ये स्टाइल हो गया। तो अल्लाह कहते हैं फिर गोया कि ये तुमने ही कत्ल किया था। वैस कत्ल तुम नफ्सन, एक नफ्स को। ये कौन नफ्स है? वही शख्स जिसका कत्ल किया गया। फद्दारा तुम फीहा, फिर तुम एक दूसरे पर उसका इल्ज़ाम धरने लगे। कहते हैं कि कातिल बड़ा होशियार था। उस शख्स को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को किसी और के घर के सामने डालाया। अब लाश किसी और के घर के सामने निकली और खुद बाद में रोता धोता जाके शोर मचा दिया कि लोगों मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया। होशियारियां हैं ना, लेकिन कितने दिन? वल्लाहु मुहरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह ताला निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। पहली बात इस हिस्से से समझने की ये निकली कि इंसान कितना ही होशियार क्यों ना बन जाए, किसी को मेरी बात नहीं पता चलेगी। मेरे दिल में क्या है, मैं क्या नियत लेके आया, मैं क्या जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हकीकत क्या है? लेकिन अल्लाह ताला निकाल देगा। क़यामत के दिन जो बहुत सारे काम होने हैं ना, उसमें से एक बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाला है, और उसका तذکرہ 30वें पारे की एक सूरत में कि वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। मुझे जितना ज़्यादा खौफ इस आयत को पढ़ के क़यामत के दिन से आता है, इससे ज़्यादा शायद ही किसी चीज़ से खौफ आता हो। अल्लाह ताला कहते हैं हासिल कर लिया जाएगा जो सीनों में छुपा हुआ है। आज दुनिया में इंसान मुख्तलिफ रिश्तों के नाते से, मुख्तलिफ गिरोहों के नाते से, इफराद के नाते से अक्सर औकात अपने साथ रहने वालों को धोखा दे रहा होता है। जाहिर कुछ करता है, होता कुछ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कितने दिन मैं निकाल के रहूँगा? क्या अल्लाह ताला ऐसी बातों को जाहिर करने के लिए क़यामत का इंतज़ार करता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान जो दूसरों के ऐबों के पीछे लगता है, अल्लाह ताला उसको अपने ही घर वालों के सामने रुसवा कर देता है। इसलिए कभी किसी के ऐब टटोलने के पीछे ना लगें। अंदर कुछ बाहर कुछ, आप अपना इजहार कर दें। अगर आपको समझ नहीं आती किसी बात की तो आप एक तरफ हो जाएं, लेकिन किसी से झूठी मोहब्बतों का इजहार ना करें। और ख़ानदानों में ये बहुत होता है, सामने देखते ही ऐसे जी वारी सदके कि आपसे ज़्यादा शायद हमें किसी और को देखकर खुशी नहीं हुई, और अभी वो घर से निकले भी नहीं और उनकी बातें शुरू हो गई नेगेटिव सूरत में। और अल्लाह ताला ने ये जो बात कही ना कि मैं निकालने वाला हूँ, तो उसकी दलील देखिए, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ये वाक़या दुनिया की सबसे सच्ची किताब में रख दिया। अल्लाह जिसको रुसवा करने के पीछे लग गए ना, उसको फिर वहाँ तक जाके रुसवा करता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए जितनी इस्लाह बाहर की करते हैं ना, अपने आप को साफ़ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इससे ज़्यादा सफाई करें अपने हम दिलों की। दिलों के जो बुग़्ज़ और कीने और गंदगी है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। फिर क्या हुआ, आप सोचिए कि वो शख्स चचा को अगर कत्ल करता है, दोनों में से कोई भी वजह थी, एक ये थी कि उसकी जायदाद लेना चाहता था, और उस दौर का भी रिवाज ये था, और आज भी जब एक शख्स का कोई अपना नहीं हो, कोई औलाद ना हो, कुछ ना हो, तो एक मौका ऐसा आता है कि चचा का वारिस भतीजा बन जाता है। उस शख्स को वो खैर मिल जानी थी, थोड़ा सा इंतज़ार करता, लेकिन कातिल बन के हमेशा की खैर से महरूम हो गया। आज भी मिल्लत इस्लामिया का ये हुक्म है कि बाप या बेटा दोनों में से कोई एक अगर दूसरे को कत्ल कर दे तो हमेशा के लिए उसकी जायदाद से निकल जाता है। सब्र की कमी इंसान से ऐसे फैसले करवाती है। और अगर रह गई बात के उसकी बेटी से निकाह करना था, तो फिर तो वो अब वो भी ना हुआ, अल्लाह ने उसको रुसवा करके रख दिया। अब हुआ क्या, फकुलना, हमने कहा। किसने कहा? अल्लाह की ज़ात ने कहा। कैसे कहा? वही के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को कहलवाया, इद्रिबूहू, मारो इसको। ये जो हु है ना पहला, इसको ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन। ये किसकी तरफ जा रहा है? मैयत, डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को मारो। बिबादिहा, बाज टुकड़ा इसका। हा क्या है? गाय, मुअन्नस में आया है। आप अभी सिर्फ ये सुन सुन के समझ जाएंगे कि हु जो है ना ये मुजक्कर के लिए आता है, और हा जो है ना ये औरत के लिए आता है, फीमेल के लिए, और औरतें हा हा ज्यादा ही करती हैं, इसी से याद कर ले। ठीक है, तो हा की जमीर मुअन्नस की, और बकरा गाय है, तो ताक की वजह से वो भी मुअन्नस है, का इस गाय का बास टुकड़ा मारो। अब हुआ क्या, मारा क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा कुरान पाक में। हम होते ना कहानी लिखने वाले, पे लिखते फिर मारा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, इस तरह क्लाइमेक्स पैदा कर देते हैं कि सुनने वाले के कान खड़े होते थे, वो खुद भी खड़ा हो जाए। नहीं, मारो, दैट्स इट। अब मुर्दा जिंदा हुआ तो फसीर से मिलता है, कुरान पाक में इसमें एक भी लफ्ज़ नहीं है। इससे पता चलता है कि कुरान पाक का असल मजमून जो है ना, वो हिदायत है, लोगों को हिदायत देना अल्लाह ताला चाहते हैं। बस नतीजा बता दिया कि कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। यानी आज जैसे एक मुर्दा जिंदा हुआ गाय के गोश्त का टुकड़ा लगने से, तो क़यामत के दिन भी जिंदा होगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कोई पूछ सकता है कि यहाँ तो गाय का टुकड़ा लगा तो मुर्दे जिंदा हुए, तो क़यामत के दिन ऐसे जिंदा हो जाएंगे? तो वहाँ भी कुछ लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसका सारा जिस्म जो है मिट्टी में घुल जाता है, सिवाय उसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा। यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये छोटे छोटे इस तरह के टुकड़ों टुकड़ों से मिला हुआ है। इस तरह आप रिंग रिंग जमा करते जाए ना, तो ये हमारी बैकबोन बनती है जो हमारे पूरे जिस्म को सपोर्ट करती है। इसमें कोई ऐसी जगह होती है जो मिट्टी के अंदर घुलती नहीं है। अब इस ज़मीन के अंदर अरबों खरबों सालों से मिट्टी के अंदर जमी हुई है, हमें नहीं पता, वो बीज की तरह कहीं ना कहीं मिली हुई है। जब सूर फूक जाएंगे, लोग ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा नफ़ा भी होगा, उसके बाद बारिश होगी। आसमान से जब बारिश आएगी तो पूरी ज़मीन पे पानी आएगा। वो बारिश का पानी जब हमारे उन स्पाइनल कॉर्ड्स को या हमारी हमारे मोहरों को टच करेगा ना, तो फिर हम उगेंगे। सूरत अम्मा या तसाल उनमें भी आता है कि हम तुमको उगाएंगे जैसे कि उगाना, अम्बता का लफ्ज़ आता है। तो गोया के कुछ ना कुछ टच ज़रूर होगा। यहाँ गाय का टुकड़ा है, वहाँ सूर की आवाज़ इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको सुनते ही लोग कब्रों से निकलने लगेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। कितना ज़बरदस्त किस्म का रब्त है अल्लाह ताला के कलाम के अंदर। और कहा कि ये मुर्दा क्यों ज़िंदा हुआ, क्या वैसे ही नहीं हो सकता था? हो सकता था। इधर मुर्दा कत्ल हुआ, कातिल ने उसको मारा, भागा उधर से, पीछे से लोग जमा होते, अरे ये क्या हुआ, कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। एकदम मुर्दा खड़ा होता, कहता मैं बताऊं मुझे किसने कत्ल किया है, मेरे भतीजे ने कत्ल किया, और मर जाता। पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? यूरी कुमायाती ही, अल्लाह निशानियां दिखाना चाहता था। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। अल्लाह ताला किसी को रुसवा करे, किसी को बदला दे, ऐसे ही दे सकता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें कुछ किए बगैर बगैर पैदा किए जन्नती या जहन्नमी करार दे सकता था, क्वाइट पॉसिबल। अल्लाह ताला का इल्म, तकदीर इलाही इतनी स्ट्रांग है कि हमारे कुछ किए बगैर उसको पता है कि उसने क्या करना है। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, किसी को नहीं पता ये बच्चा कल क्या करेगा। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, ये बड़ी नेकियाँ करे, अपना वक्त पूरा करेगा, फिर हमें पता चलेगा इसने इस साल पढ़ना शुरू किया, इस साल फलां मदरसे गया, फिर इस क्लास में गया, फिर कुरान हिफ्ज़ किया, फिर यूनिवर्सिटी गया, दिस एंड दैट। अल्लाह ताला को आज भी पता है, और इसी बुनियाद पे कल जन्नत दे सकता है अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह नहीं देता। क्यों? कि अल्लाह ताला हमारे लिए हुज्जत कायम करना चाहता है, वरना तो मानते कहाँ, करके नहीं मानते, गलत करते हैं और फिर नहीं मानते। और कहाँ ये हाल होता कि कुछ ना करते और अल्लाह हमें आग में डाल दे, अल्लाह ना करे, हमने तो शोर मचाना था कि अल्लाह ताला तू कर, हमें भेज के तो तू देखता, तुझे क्या पता हम क्या कर सकते थे। अच्छा, अब ये क्या है कि अल्लाह ने कहा इसमें निशानियां हैं ताकि तुम गौर करो, चलिए हम भी गौर कर लेते हैं। ताकिलून, अकल से काम लो। पहली बात इससे पता चलती है कि कुछ बातों से यानी कुछ निशानियों से फ़ायदा उठाने के लिए वाकई अक्ल की ज़रूरत होती है, वही की भी ज़रूरत नहीं होती। हिदायत का सोर्स मुख्तलिफ तरह से हम तक पहुँचता है, लेकिन अक्ल जिसके पास इस्लाम नहीं पहुँचा, जिसको इल्हामी किताब नहीं मिली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्ल के तहत भी हमें बताती हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। आज अगर हम मुसलमान हैं, अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, कुरान पाक हमारे सामने खुला हुआ है, तो हम वही की रोशनी में देख रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन तक किताबें हिदायत नहीं पहुंची, क्या फिर वो ऐसे ही दुनिया से जाएं? नहीं, अकल भी एक मेयार है, हक और बातिल को परखने का। एक और बात इससे पता चली, बहुत बारीक नुक्ता है, और वो क्या कि लोग क्या सोच रहे थे कि गाय को कत्ल करेंगे, मुर्दा जिंदा होगा। बड़ी बोझिल चीज लगी ना उनको, यानी उनको लग रहा था कि ये बहुत हमारे लिए एक मुश्किल चीज है। अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करने को वो मुश्किल समझ रहे थे, लेकिन फायदा क्या हुआ? अमल किया, क्या उनका नुकसान हुआ? नहीं, इस तरह दूर हो गया सोसाइटी के अंदर। खुदा न खास्ता हम जहां रहते हैं, एकदम सुबह हम उठे और हमें पता चल दे हमारे गली के साथ में कोने में रहने वाले शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इस तरह फैलेगा ना। कितने लोग हैं जो उस वक्त पुर इत्मीनान हो, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, गम क्या होगा, किसने मारा किसने मारा, क्या हुआ क्या क्या क्या, इस तरह था ना। अल्लाह के एक हुक्म को जिसको वो मुश्किल समझ रहे थे, अल्लाह ने उसकी वजह से मुआशरे का इस्तराब दूर कर दिया। आज भी यही हुक्म है, हम दीन के जिन अहकाम पे अमल करने को अपने लिए मुश्किल समझते हैं, हमें लगता है कि ये किया तो ज़िंदगी मुश्किल, हालांकि हकीकत क्या है कि उन पे अमल करने से ज़िंदगी आसान होती है। इसी को सूरत अनफाल में कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूलि इज़ा दअकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। तो बहरहाल इसमें वाक़यात में और भी बहुत सारे सबक हैं। अब ये वाक़या बनी इसराइल के सामने हुआ, कितना बड़ा वाक़या था, और अल्लाह ने क्यों पेश किया? ताकि इनका अकीदा आखिरत दुरुस्त हो जाए, मरने के बाद दोबारा जी उठने का यकीन इनकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। क्या? सुम्मा कसत, फिर और सख्त हो गए। कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, किन के दिल? हर एक के नहीं सख्त हुए थे, और याद रखिए पूरी कौम के दिल सख्त नहीं हुआ करते, लेकिन कुछ लोगों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि फिर वो सबके ऊपर ही आ गया। अल्लाह ने कहा तुम सबके दिल सख्त हो गए। जिन लोगों के सामने ये वाक्या पेश आया उनके दिल सख्त हो गए। देखिए, मुर्दे को जिंदा होता देखना कोई छोटी बात थोड़ी है, इंसान तो पिघल जाए। तो क्या आज हमने कभी किसी मुर्दे को जिंदा होता देखा? हमारी आंखों के सामने लोग मौत के बिस्तर से उठ के ठीक हो जाते हैं, हादसे से बाल बाल बच जाते हैं, क्या हमारे दिल नरम होते हैं? हर रोज खबरों में 10, 20, 25, 50 लोगों का कत्ल देखना तो आम बात हो गई। पहले तो कहते हैं कि कोई कत्ल होता था तो सुरखांदी चलती थी, कि लोग कहते थे आज कहीं जुल्म हो गया, अंधेर हो गया, और आज क्या हाल है कि अगर ये कानून हो तो हर वक्त ही आंधियां चलती रहे। क्या सच बताएं, किसी अखबार को पढ़ते हुए फलां जगह 70 लोग मारे गए, दिल में कुछ होता है? कोई उस वक्त नाश्ते की टेबल से ऐसे ही उठ जाता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को? हम तो बल्कि लज्जत के लिए पढ़ रहे होते हैं, आदत हो गई है कि देखें आज किस जगह हंगामे हुए। दिल सख्त हो जाते हैं जब इंसान मौत को बड़ी करीब से बार बार देखता है ना, तो बजाय इसके कि नसीहत ले, सख्त होता है। जैसे मारूफ है बात कि डॉक्टर्स के दिल सख्त हो जाते हैं, नर्सिस के दिल सख्त हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करने लगे चूंकि हर वक्त ही मुर्दों को देख रहे हैं, उनके दिल सख्त होते हैं। ठीक है, ये तो मादी चीज़ें हैं, लेकिन रूहानी तौर पे किसी को मरता देखकर, या मरने के बाद जिंदा होता देखकर, या मौत से बाल बाल बचता देखकर दिलों को नरम होना चाहिए। और यही दिल नरम होते हैं जिनके अंदर शऊर होता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिम बाद ज़ालिका, इसके बाद कितने सख्त हुए? नंबर एक, फहिया कल हिजारा, इस पे ए लिख लें या वन लिख लें, पत्थरों जैसे हो गए। अल्लाह ने तशबीह दी है, एक दावा दायर हो रहा है कि तुम्हारे दिल कितने सख्त हुए, पत्थरों जैसे, या औ अशद्दु कसवा, उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। दो बातें की अल्लाह ताला ने, कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जितने, यानी तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, बल्कि तुम तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अब यहां तक दावा है, आप लिखना चाहें ना ये जितना जुमला अभी मैंने बोला है, इस पूरे के ऊपर हल्की सी ब्रैकेट लिख लें कि अल्लाह ताला का दावा। अब इस दावे की दलील में 3 दलाइल दिए जा रहे हैं, यानी इस दावे को साबित करने के 3 दलाइल हैं। क्या? वह इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, और पत्थरों में से तो ऐसे भी हैं जिनसे नहरें जारी होती हैं ना, बड़ी बड़ी नहरें आप देखिए, बुनियादी सोर्स उनका पत्थर ही होते हैं, पानी गिरता है फिर वो चश्मों की सूरत में, फिर वो जमीन पे मैदानी इलाकों में नहरों की सूरत में आता है। मुराद कहे कि पत्थरों में से तो नहरें बहती हैं और तुम्हारी आंखों से अल्लाह के हुक्म सुनकर आंसू नहीं निकलते। यहाँ नहरें आंसुओं को कहा गया। ये जो नहर, चश्मे, आबशारें जो है ना, ये पहाड़ों के आंसू हैं। सूरत अल हशर में भी आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं, वलौ अनजलना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअईतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। बिल्कुल आखिरी आयते हैं, जहाँ से फिर आगे तो आखिरी रुकू शुरू होता है, समझो उसके करीब है। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह की खशियत से वो कांपने लगता और लरसने लगता, लेकिन इंसान नहीं कांपते। हम कुरान पढ़ते हुए भी कुछ और सोच रहे होते हैं, हमें इर्द गिर्द की होश भी होती है, हम कुछ और भी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, देखो पहाड़ों के अंदर से तो आंसू निकल आते हैं, तुम्हारे दिलों से आंसू नहीं निकलते। ये एक दलील थी, ठीक है। और व इन मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज इनमें से ऐसे हैं जो फट जाते हैं, फट पड़ते हैं और इनमें से पानी निकल आता है। पहाड़ों का फटना क्या है? शक होना। कभी आपने पहाड़ी इलाकों का सफर किया हो और पूरे पहाड़ के अंदर से कहीं एक हल्का सा क्रैक दिखता है और उसमें से हल्की सी पानी की धार निकल रही होती है। बाज तो बड़ी बड़ी आबशारें होती हैं ना, लेकिन कुछ छोटे छोटे चश्मे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि पत्थरों के अंदर पानी निकलता है, इनसे ज्यादा पानी निकलता है, बाज जाके फिर कम निकलता है, और कुछ पत्थरों का तो हाल क्या है कि वह इन मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। तीसरी सिफत पहाड़ों की क्या है कि कुछ तो अल्लाह की खशियत से जमीन पे गिर जाते हैं। ये क्या है? लैंड स्लाइडिंग। आप खबरों में सुनते होंगे सर्दियों में कि बर्फानी तोदे गिरे और साथ पत्थर भी गिर गए। कभी बस जा रही थी, ऊपर से एक पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। ये पत्थरों की सलाहियत आज भी लोग देखते हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं। ये कौन सी खशियत है? अल्लाह के खौफ से पत्थरों का नीचे गिरना। इंसान अल्लाह के सामने ना तो कसरत से रोते हैं कि नहरों जैसे आंसू निकल आए, और ना तन्हाई में कतराई आंसुओं का निकल आए कि गोया के यशक्का को फयाखरुजु मिनहुल माँ की कैफियत हो, और ना ही खशियत के मारे गिर पड़ते हैं। तो बताओ फिर अल्लाह का दावा ये सच नहीं है कि तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारा औ अशद्दु कसवा। सच है ना, पत्थर बज़ाहर बेजान चीज़ है, लेकिन आज साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि इनके अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूविंग कैफियत में, हर सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं। आप किसी भी बहुत बड़ी खुर्दबीन, जिसके अंदर चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, तो आप ज़मीन के किसी टुकड़े को, पत्थर को, रॉक को रख के देखें तो आपको उसके अंदर इस तरह गोल गोल घूमते हुए कुछ दिखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी पता चलता है कि पत्थरों के अंदर सलाहियतें होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से पहले सलाम किया करता था। किसने एक दफ़ा एक ईमेल भी भेजी थी, एक पत्थर ख़ास एक ऐसी कैफियत में है, और कुछ उसके बारे में उन्होंने कहानी रख थी लिखी हुई कि इसने किसी मौके पे नबी सल्लम को सपोर्ट दी थी, यानी झुक गया था। वल्लाहु आलम, उसकी कोई सनद नहीं थी उनके पास। फिर एक मौके पे नबी सल्लम जब मदीना में आए तो कच्ची कच्ची मस्जिद थी, शुरू के दिन जैसे होते हैं। आप मस्जिद नबी में एक खजूर का दरख्त था, उसके तने को टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। कुछ दिन गुजरे, एक औरत अपने घर में से मेंबर बनवा के ले आई और मेंबर नबी सल्लम के लिए लगा दिया। लकड़ी की एक चीज़ होती है जिस पे खड़े होकर आप खुतबा देते हैं। जो ही आप मेंबर पे खड़े हुए स्पीच के लिए, तो रोने की आवाज़ें आईं, जैसे बच्चा रोता है, युइन्नु अनीना, जैसे छोटा बच्चा बिलक 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 के रोता है ना, ऐसी आवाज़ आई। नबी सल्लम उस मेंबर से नीचे उतरे और देखा कि वो खजूर का तना जिसको टेक लगाकर कल तक अल्लाह का नबी अल्लाह का कलाम पढ़ता था, वो रो रहा था कि कल तक तो अल्लाह के नबी की कमर मेरे साथ लगती थी, आज मैं महरूम हो गया। हम कितना रोते हैं नेकी के मौके से महरूम होने पे। फिर आपने उसको मुंह लगाया और कुछ कहा तो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर आपने वापस आके ये बात बताई कि ये खजूर का तना आज कुरान की दूरी से रो रहा है। सोचिए ज़रा, कौन कहता है ये बेहिस है? सूरत बनी इसराइल में आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं हर मखलूक अपनी तस्बीह कर रही है लेकिन तुम नहीं उसको समझते। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि इनके अंदर हिस है, हमें नहीं बता सकते लेकिन अपनी ज़ुबान में ये पत्थर पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने यहाँ सबक समझाया। अब आप देखिए कि यहाँ दिल की सख्ती और पहाड़ों के और पत्थरों के साथ ये बात हुई। दिल कब सख्त होते हैं? क्या आज उम्मते मुस्लिमा के दिल सख्त हैं? दिल सख्त होते हैं जब दीन में हीले और बहाने निकाले जाएं। ये लिख लें जुमला, आपके लिए ये एक कोटेशन बन जाएगी, एक ऐसा कुलिया बन जाएगा कि जिसको सेट करेंगे कई जगह फिट होगा कि जब अल्लाह का हुक्म सुनकर हीला बहाना किया जाए, शरीयत के अहकामात से बचने के लिए चोर दरवाजे ढूंढे जाएं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की जाए, तो जो नतीजा निकलता है वो क्या है कि दिल की सख्ती होने लगती है। ये एक वजह होती है। खुलेआम मुखालफत नहीं कर सकते, धोखा देते हैं। आपको पता है कि बाज़ लोग बेदीनी को दीन के नाम पे करते हैं। ज़रा कि उनसे कहे कि आप हमें ये बात कह रहे हैं, हम ये करें, हम ये मुखबरी करें, हम ये राज लेके आए, तो कहते हैं नहीं, आप इसको बेदीनी नहीं, दीन समझ के करें। ये सरासर दीन का तकाजा है, आप इसकी तसल्ली रखें। ये बातें दिल की सख्ती की अलामत होती हैं। यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में लोगों को भेजते थे क्या कह के कि जाओ वहां से खबरें उड़ा के आओ, जरा उनके अंदर फूट डालो। वो कहते थे आप ये बात कह रहे हैं, आप तो अहले किताब है। तो वो कहते थे तुम्हारा मतलब है कि हम तुम्हें गुनाह का काम कह रहे हैं, ये सरासर दीन है। तो ये कैफियत जब आती है कि इंसान हीले बहानों के जरिए काम करे तो दिल सख्त होता है। इसी तरह एक और चीज़ नंबर दो लिख लें उसको आप, जिससे दिल सख्त होता है, वो है कसरते कलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो मैं अभी आपको नहीं जान के कोट करवा रही लेकिन उससे ये बातें निकलती हैं, वो कि आपने फरमाया कि कसरते कलाम से बचो, टॉकेटिव होना, बीइंग टॉकेटिव, क्योंकि कसरते कलाम वाला जो शख्स होता है उसका दिल सख्त हो जाता है। और अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो जाए। आप देखिए, जो बहुत बोलता है ना वो सुनना नहीं चाहता, उसका दिल होता है बस मेरी सुन लो, खुद पसंदी की एक अलामत है। इसी तरह आपने एक रिवायत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि चार बातें बड़ी बदकिस्मती की हैं, किसी के अंदर ये चार बातें, इनमें से कोई हो तो समझो कि वो बदबख्त है। और उसमें से एक थी तूलुल अमल, लंबी आरजुएं, ये बच्चे बड़े होंगे फिर कमाएंगे, फिर हम घर बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे, यानी लंबी लंबी उम्मीदें। वो कहते हैं ना समा 100 बरस का पल की खबर नहीं, लंबी आरजुओं से समझे कि इंसान बदबख्त होता है। फिर हिर्स वाले दुनिया, दुनिया की हिरस, तमा, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तीसरी चीज़ है आँखों का खुश्क होना, अल्लाह की खशियत से ना रोना। हम कब आखिरी दफ़ा अल्लाह का कलाम पढ़ के रोए? कब आखिरी दफ़ा अल्लाह के नबी की मोहब्बत में रोए? हमें भी आंसू बड़े आते हैं, वो हमारे ही किसी अपने के गम के होते हैं, या औलाद का गम रुलाता है, या शौहर का गम रुलाता है, या किसी के मुस्तकबिल की फ़िक्र रुलाती है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी आंखें अल्लाह के खौफ से रोने लगें।